यीशु मसीह का प्रकटीकरण संख्या 18 पिताओं के पाप
856 में पूर्व में फिलाडेल्फियाई रहे मिलराइट एडवेंटिज्म को जेम्स और एलन व्हाइट ने लाओदिकियाई ठहराया। तब जेम्स व्हाइट ने रिव्यू एंड हेरल्ड के माध्यम से आंदोलन में लाओदिकिया का संदेश प्रचारित करना शुरू किया। उसी प्रकाशन में उसी वर्ष हायरम एडसन ने लेवीय व्यवस्था 26 के 7 समय के विषय में अधिक प्रकाश 8 लेखों की श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत किया। व्हाइट दंपति उन्हें इतना मान देते थे कि उन्होंने अपने पहले पुत्र का नाम उनके नाम पर रखा। ये श्रृंखला इस वादे के साथ समाप्त हुई कि भविष्य में इसे पूरा किया जाएगा, पर वो फिर कभी सामने नहीं आई। पहले स्वर्गदूत के संदेश के आंदोलन के फिलाडेल्फिया से लाओदिकिया में संक्रमण के समय आंदोलन लेवीय व्यवस्था 26 के 7 समय पर ठोकर खा गया, जो कि वही पहली काल भविष्यवाणी थी जिसे परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने विलियम मिलर को पहचानने और घोषित करने के लिए प्रेरित किया था। 7 काल मिलराइट मंदिर की नींव का मुख्य कोने का पत्थर था। किसी पवित्र नींव का हर भविष्य सूचक चित्रण मसीह का ही चित्रण है, क्योंकि मसीह के सिवा दूसरी कोई नींव डाली ही नहीं जा सकती।
क्योंकि जो नींव रखी जा चुकी है, अर्थात यीशु मसीह, उसके सिवाय कोई मनुष्य दूसरी नींव नहीं रख सकता। 1 कुरिन्थियों 3:11
मसीह केवल नींव ही नहीं है, वे वो आधारशिला भी हैं जिसे निर्माताओं ने अस्वीकार किया और बाद में उसी पर ठोकर खाई। वो वही पत्थर है जो अंततः कोने का प्रधान पत्थर बनता है। मिलराइट इतिहास में 7 बार उस कोने के पत्थर का प्रतीक था। मसीह ने एक सप्ताह के लिए बहुतों के साथ वाचा की पुष्टि की। इसराइल के उत्तरी राज्य के विरुद्ध 7 गुना की भविष्यवाणी की संरचना, जिसे हिराम एडसन ने 8 अधूरे लेखों में पहचाना था, ठीक वही संरचना दोहराती है जो उस भविष्यवाणी के सप्ताह में थी, जिसमें मसीह ने दानियल अध्याय 9:27 की पूर्ति में वाचा की पुष्टि की। जिस सप्ताह में मसीह इसराइल को एकत्र कर रहे थे, उसकी संरचना सर्वथा समान है उस सप्ताह की संरचना से जिसमें मसीह ने इसराइल को तिथर बितर किया। प्राचीन इसराइल का तिथर बितर होना 2520 वर्ष का था और आत्मिक इसराइल का एकत्रकरण 2520 दिनों का था। उसने वाचा की पुष्टि करने के लिए इसराइल को एकत्र किया और अपनी वाचा के विवाद के कारण इसराइल को तिथर बितर भी किया। 7 गुना को मिलराइट मंदिर की नींव का पत्थर मानना मसीह को नींव का पत्थर मानने के साथ पूर्ण सामंजस्य में है। उस पत्थर को अस्वीकार करना मसीह को अस्वीकार करना है।
जब मसीह ने 1856 में ईसाई इतिहास में पहली बार लाओदिकिया के दरवाजे पर खड़े होकर दस्तक दी, तब वे उस ठोकर के पत्थर के विषय में ज्ञान की वृद्धि लाना चाहते थे जिसे राजमिस्त्री ठुकराने वाले थे। 7 वर्ष बाद, या यूं कहें कि 2520 प्रतिशत कतामक दिन बाद, लाओदिकियाई एडवेंटिज्म ने दरवाजा बंद कर दिया। दुर्भाग्यवश एडवेंटिज्म ने ज्ञान की वृद्धि को न देखने से इनकार कर दिया। जिस पत्थर से आप ठोकर खाते हैं वो ऐसा पत्थर है जिसे आप देखते नहीं, फिर भी वो वही मौजूद रहता है।
मेरे लोग ज्ञान के अभाव से नष्ट हो रहे हैं, क्योंकि तूने ज्ञान को ठुकरा दिया है, इसलिए मैं भी तुझे ठुकराऊंगा और तू मेरे लिए याजक नहीं रहेगा। चूंकि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को भूल दिया है, मैं भी तेरे बच्चों को भूल जाऊंगा। होशे 4:6
7 समय का श्राप जो यहूदा के दक्षिणी राज्य के विरुद्ध था, 773 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ और दानियल अध्याय 8:14 के 2300 वर्षों के साथ 22 अक्टूबर 1884 को समाप्त हुआ। 7 समय उसी भविष्यवाणी का हिस्सा था जिसे एडवेंट आंदोलन की नींव और केंद्रीय स्तंभ के रूप में पहचाना गया है। एडवेंटवाद की नींव और केंद्रीय स्तंभ मानी जाने वाली वो भविष्यवाणी ठीक उसी समय पूरी हुई जब अन्य कई भविष्यवाणियां भी पूरी हुईं। 7 समय 2300 दिन मलाकी अध्याय 3, दानियल अध्याय 7:13 और मत्ती अध्याय 25 में 10 कुवारियों का दृष्टांत, ये सब 22 अक्टूबर 1884 को पूरी हुईं। 22 अक्टूबर 1884 की तिथि एडवेंट आंदोलन की मूलभूत तिथि है और उस तिथि से संबंधित केवल एक ही आज्ञा की पहचान की गई थी।
और वो स्वर्गदूत जिसे मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा देखा था ने स्वर्ग की ओर अपना हाथ उठाया और उसकी शपथ खाई जो युगानुयुग जीवित है, जिसने स्वर्ग और जो कुछ उसमें है और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है को उत्पन्न किया, कि अब समय न रहेगा। प्रकाशित वाक्य 10:5-6।
सिस्टर व्हाइट प्रकाश इत वाक्य के 10वें अध्याय के उस स्वर्गदूत जो पृथ्वी और समुद्र पर खड़ा था को यीशु मसीह के रूप में पहचानती है।
यूहन्ना को निर्देश देने वाला वो शक्तिशाली स्वर्गदूत कोई और नहीं, स्वयं यीशु मसीह थे। समुद्र पर अपना दाहिना पैर और सूखी भूमि पर अपना बायां पैर रखना ये दर्शाता है कि शैतान के साथ महान संघर्ष के अंतिम दृश्यों में वो कैसी भूमिका निभा रहे हैं। ये स्थिति समस्त पृथ्वी पर उनकी सर्वोच्च शक्ति और अधिकार को प्रकट करती है। सेवंथ डे एडवेंटिस्ट बाइबल कमेंट्री, खंड 7, 961।
मसीह ने अपने सर्वोच्च अधिकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए समुद्र और पृथ्वी पर खड़े होने की स्थिति ग्रहण की। तब उन्होंने अपना हाथ उठाया और आज्ञा दी कि अब समय और न रहेगा। मसीह मिलर राइटों के साथ वाचा में प्रवेश कर रहे थे और उन्होंने उन्हें एक आज्ञा दी, जैसे उन्होंने अब्राहम के साथ वाचा करते समय उसे एक आज्ञा दी थी। उन्होंने अब्राहम को नर बालकों का खतना करने की आज्ञा दी। मूसा के इतिहास में जब उन्होंने एक चुने हुए लोगों के साथ वाचा में प्रवेश किया तो उन्होंने अनेक आज्ञाएं दी, और इन आज्ञाओं में ये निर्देश भी था कि केवल याजक ही वाचा के संदूक को छू सकते हैं। उन्होंने 22 अक्टूबर 1844 को अपना हाथ उठाकर ये शपथ खाई कि भविष्य सूचक समय अब आगे बाइबिल की भविष्यवाणियों में शामिल नहीं किया जाएगा। यीशु ने समय और काल के विषय को तब संबोधित किया जब वे स्वर्गदूतों के बादल में स्वर्गारोहित हुए। ये घटना दो गवाहों के एक ध्वज के रूप में इनके स्वर्गारोहण का प्रतिरूप थी। तब जो उन्होंने आज्ञा दी थी वो समय और काल के विषय में थी।
इसलिए जब वे इकट्ठे हुए तो उन्होंने उससे पूछा, प्रभु क्या तू इसी समय इसराइल को राज्य फिर से बहाल करेगा? उसने उनसे कहा, वे समय और अवसर जिन्हें पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारे जानने के लिए नहीं है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह बनोगे यरूशलेम में, सारे यहूदिया में और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक। प्रेरितों के काम 1:6-8।
यीशु ने ये नहीं कहा कि समय और काल नहीं होते, क्योंकि सुलेमान के माध्यम से बोलते हुए उन्होंने ये पुष्टि की थी कि समय और काल होते हैं।
हर बात का एक समय होता है और आकाश के नीचे हर प्रयोजन के लिए एक समय होता है। सभोपदेशक 3:1।
बाइबल के अभिलेख में समय और काल हैं जो पलमोनी अद्भुत गणक की गवाही देते हैं, परंतु 22 अक्टूबर 1884 से परमेश्वर की प्रजा को ये आज्ञा दी गई है कि वे समय पर आधारित किसी भी भविष्यवाणी संदेश को फिर कभी प्रस्तुत न करें। अपने स्वर्गारोहण से ठीक पहले शिष्यों को यीशु का जो निर्देश था वो उस इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है जो ठीक उससे पहले होगा जब उसकी शुद्ध की हुई प्रजा प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 में एक ध्वज के समान ऊंचा उठाई जाएगी और वो 22 अक्टूबर 1884 को दी गई उसकी आज्ञा से मेल खाता है। एडवेंटवाद की स्थापना तिथि पर मसीह ने आज्ञा दी कि अब समय पर आधारित भविष्यवाणी संदेश और न दिए जाए, और अपने स्वर्गारोहण से समय जो प्रकाशित वाक्य 11 में दो गवाहों के स्वर्गारोहण का प्रतिरूप था उसने वही आज्ञा दोहराई।
हमारे सब भाई बहन उनसे सावधान रहें जो प्रभु के वचन की पूर्ति के लिए उनके आगमन के संबंध में हो या किसी अन्य विशेष महत्व की प्रतिज्ञा के संबंध में कोई समय ठहराते हैं। ये तुम्हारा काम नहीं है कि उन समयों या कालों को जानो जिन्हें पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है। झूठे शिक्षक परमेश्वर के कार्य के लिए बहुत उत्साही दिखाई दे सकते हैं और अपने सिद्धांतों को संसार और कलीसिया के सामने रखने के लिए साधन खर्च कर सकते हैं, परंतु क्योंकि वे सत्य के साथ त्रुटि मिला देते हैं उनका संदेश छल का होता है और आत्माओं को झूठे मार्गों पर ले जाएगा। उनका सामना और विरोध किया जाना चाहिए, ये इसलिए नहीं कि वे बुरे मनुष्य हैं, बल्कि इसलिए कि वे असत्य के शिक्षक हैं और असत्य पर सत्य की मुहर लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। टेस्टिमोनीज टू मिनिस्टर्स 55।
सिस्टर व्हाइट ने स्पष्ट कहा कि हमें अब कभी भी समय निखारण का ऐसा संदेश नहीं मिलेगा जो किसी भी विशेष महत्व की घटना की पहचान करे, यहां तक कि उनके दूसरे आगमन के लिए भी नहीं। समय भविष्यवाणी, जो मिलराइट आंदोलन का विषय थी, 22 अक्टूबर 1844 को समाप्त हो गई और उस बुनियादी तिथि से जुड़ा एकमात्र आदेश यह था कि परमेश्वर के संदेश की प्रस्तुति में फिर कभी समय का उपयोग न किया जाए। पहले स्वर्गदूत के आंदोलन के आरंभ में फिलाडेल्फिया से लाउदीकिया में संक्रमण के ठीक समय पर मिलराइट आंदोलन के आधारभूत सत्य पर अधिक प्रकाश प्रदान किया गया। 7 वर्ष बाद या प्रतीकात्मक रूप से 2520 दिनों बाद या एक निर्जन स्थान के बाद 1813 में 7 समय की आधारशिला को निर्माताओं ने अलग रख दिया। तीसरे स्वर्गदूत के अंतिम चरण में लाउदीकिया से फिलाडेल्फिया में संक्रमण के ठीक उसी बिंदु पर एक ऐसी परीक्षा दी जाती है जिसमें पितरों के पापों की स्वीकारोक्ति शामिल है। पितरों के लिए नींव की कसौटी 7 गुना थी जो उनकी आधारशिला थी। क्या अंतिम चरण आधारभूत तिथि से संबंधित एकमात्र आज्ञा की उपेक्षा करेगा जैसे उनके पितरों ने अपनी आधारशिला की उपेक्षा की थी?
हाँ, उन्होंने निसंदेह ठीक वही काम किया। उन्होंने अपने पितरों के पापों को दोहराया।
उनके पिताओं ने आधारभूत तिथि पर पाप नहीं किया, क्योंकि अन्य बातों के साथ साथ उस आधारभूत तिथि पर वे अभी भी फिलाडेल्फिया आए थे। उनके पिताओं ने अपने आधारभूत परीक्षण में तब असफलता पाई जब वे लाओदीकिया में परिवर्तित हो गए और 7 समय तथा उसके बढ़ते प्रकाश को अस्वीकार कर दिया। 1663 में उनकी आधारभूत विफलता से पहले मसीह 7 वर्षों तक उनके लाओदीकियाई हृदयों के द्वार पर दस्तक दे रहे थे। 7 वर्ष 7 बार और मरुभूमि के प्रतीक है। 1856 से 1863 तक की मरुभूमि के बाद वे अपनी आधारभूत परीक्षा में असफल रहे।
तीसरे स्वर्गदूत के आंदोलन की पहली निराशा में परमेश्वर के लोगों ने पाप किया, मूलभूत तिथि से सीधे संबंधित एकमात्र आज्ञा को अस्वीकार करके। बेहतर जानते हुए भी उन्होंने भविष्यवाणी के संदेश में समय की भविष्यवाणी को शामिल करना चुना। ऐसा करते हुए उन्होंने मूसा का वो पाप दोहराया कि उसने अपने पुत्र का खतना करने की उपेक्षा की, और उज्जा का वो पाप कि उसने वाचा के संदूक को छुआ जबकि वो जानता था कि ये करना उसे निषिद्ध था। तीसरे स्वर्गदूत का आंदोलन वही कर बैठा जिसे वे जानते थे कि वो ठीक नहीं है। यदि कोई उस तथ्य पर रम पोतना चाहता है तो रंग के डिब्बे का शेष सारा रंग भी इस्तेमाल कर ले ताकि इस सत्य को भी ढक दे कि मूसा और उज्जा दोनों ने पाप किया और परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध बगावत प्रकट की, क्योंकि वे सभी सुधार रेखाओं की सबसे अंतिम सुधार रेखा की पहली निराशा का प्रतीक थे, वह सुधार रेखा जिसकी ओर हर सुधार रेखा आगे संकेत करती थी। सुधार रेखाओं में पहली निराशा के चित्रण अल्फा और ओमेगा के हस्ताक्षर लिए हुए हैं और उनमें जो अभिलेख है वह परमेश्वर के लोगों के लाभ के लिए है, भले ही परमेश्वर के लोग उससे लाभ उठाने से इनकार ही क्यों न करें। पहले स्वर्गदूत के आंदोलन को 7 वर्षों की अवधि दी गई जो 7 काल की मरुभूमि का प्रतीक है, ताकि वो 7 काल के प्रकाश के साथ लाओदीकिया के संदेश को स्वीकार करे। 7 काल का शाप प्रभु के मुख से उगल दिए जाने का शाप है। 863 में उन्होंने यरीहो का पुनर्निर्माण करने का काम दोहराया, एक ऐसा काम जिसमें शाप निहित था। 856 से 863 तक के 7 वर्ष प्राचीन इज़राइल के पितरों की उस बगावत और पाप का लघु चित्रण है जिसने उन पर 7 काल का शाप ले आया। आधुनिक इज़राइल ने 863 तक से अपने पितरों के पापों को दोहराया। तीसरे स्वर्गदूत का आंदोलन पहली निराशा की परीक्षा में उतनी ही निश्चितता से असफल रहा जैसे मूसा और उज्जा असफल हुए थे। तब वे सड़कों पर 3.5 दिन के निर्जन प्रदेश काल के लिए मार डाले गए। अब सांत्वनाकर्ता की ध्वनि द्वारा उन्हें शरीरों में गढ़ा जा रहा है। सांत्वनाकर्ता की ध्वनि निर्जन प्रदेश में स्वर के माध्यम से दी जा रही है, और अब वे जिस परीक्षा का सामना कर रहे हैं वो समय निर्धारण की नहीं बल्कि सात समय की है। वे समय निर्धारण की परीक्षा में पहले ही असफल हो चुके हैं। उनकी परीक्षा इस बात पर नहीं हो रही कि वे सात समय को एक मान्य सत्य मानते हैं या नहीं, क्योंकि वे पहले ही ये गवाही दे चुके हैं कि वे सात समय को एक मान्य भविष्यवाणी के रूप में स्वीकार करते हैं। उन्होंने ये स्वीकार किया है कि वे 2520 वर्षों के विखराव की भविष्यवाणी पर विश्वास करते हैं, परंतु उन्हें ये ज्ञात न हो कि सात समय के संबंध में एक नई परख का प्रकाश आया है। वे वहीं खड़े हैं जहां उनके पूर्वज 1856 में खड़े थे। नया प्रकाश ये है कि प्रकाशित वाक्य 11 के 3.5 दिनों का अर्थ केवल फ्रांसीसी क्रांति की पहचान भर नहीं है, बल्कि अब वो एक वर्तमान सत्य की वास्तविकता है। क्या सात गर्जनों के छिपे हुए इतिहास का खुलना और सातवीं मुहर का खुलना वास्तव में दो गवाह है जो ये संकेत देते हैं कि यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य अब अनमुहरित किया जा रहा है? यदि ऐसा है तो क्या ये वास्तव में सत्य है कि प्रकाशित वाक्य की पूरी पुस्तक अंतिम दिनों के बारे में ही बोलती है? यदि ये सत्य है तो क्या 3.5 दिन कुंवारियों के दृष्टांत में विलंब के समय का प्रतिनिधित्व करते हैं? यदि ऐसा है तो क्या सात समय का उपाय वास्तव में ऐसी आज्ञा का प्रतिनिधित्व करता है जिसे 18 जुलाई 2020 की नैशविल भविष्यवाणी में भाग लेने वालों द्वारा पूरा किया जाना चाहिए? वाह, आपके लिए एक परीक्षा है। जो लोग जागते हैं और ये समझते हैं कि वे प्रतीक्षा के समय में हैं, क्या उन्हें सचमुच 3.5 दिनों के अंत में अपने पापों और अपने पिता के पापों के लिए पश्चाताप करना पड़ता है? क्या वास्तव में भविष्यवाणी में समय का उपयोग न करने के आदेश की अवहेलना करना पाप था? जिन लोगों ने ये रुख अपनाया कि नैशविल की असफल भविष्यवाणी किसी तरह परमेश्वर का अभिप्रेत उद्देश्य थी, और जिन्होंने बाद में उस दावे को बनाए रखने का प्रयास किया, उनके लिए मैं एक और बात जोड़ना चाहूंगा जो परमेश्वर की भविष्यवाणियों में समय का इस्तेमाल करने के पाप से भी आगे है। नैशविल की झूठी भविष्यवाणी के साथ जो हुआ वो केवल 1854 में मसीह के आदेश के प्रति विद्रोह का प्रकटीकरण भर नहीं था, वो ऐसा कार्य था जिसने एडवेंटिज्म के बाहर के लोगों को बता दिया कि भविष्यवाणी की आत्मा में पाई जाने वाली भविष्यवाणियां त्रुटिपूर्ण है। ये भविष्यवाणी की आत्मा के लेखों पर एक कलंक था। ये दुनिया के लोगों के लिए इस बात का प्रमाण देता है कि एले वाइट की रचनाएं जोसेफ स्मिथ या नोस्ट्रोडमस की रचनाओं जितनी ही महत्वपूर्ण हैं। एलन वाइट के अनमोल शब्द हमारे विद्रोह के घृणित शब्दों से भ्रष्ट कर दिए गए। ये केवल मसीह जो परमेश्वर का वचन है के विरुद्ध विद्रोह नहीं था, ये साथ ही भविष्यवाणी की आत्मा के विरुद्ध भी विद्रोह था। यूहन्ना जिस द्वीप को पतमोस कहा जाता है वहां इसलिए सताया नहीं जा रहा था कि उसने अपनी मानवीय राय को बाइबल और भविष्यवाणी की आत्मा से ऊपर रखा, बल्कि इसलिए कि उसने उन दो साक्षियों की आज्ञा मानी।
मैं यूहन्ना, जो तुम्हारा भाई भी हूं और क्लेश में तथा यीशु मसीह के राज्य और धैर्य में तुम्हारा सहभागी हूं, परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही के कारण उस द्वीप में था जिसे पतमोस कहा जाता है। प्रकाशित वाक्य 1:9।
हमने अपनी पहली निराशा में अपने पूर्वज मूसा के पापों को दोहराया और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। हमें इसे स्वीकार करना चाहिए क्योंकि हम अब 1856 पर आ पहुंचे हैं। अब सात समय के विषय में नया प्रकाश है जैसे तब था। हम अब लाओदिकिया से फिलाडेल्फिया में संक्रमण के दौर में हैं, जैसे 1856 में आरंभिक आंदोलन फिलाडेल्फिया से लाओदिकिया से आरंभ लिए गए। 1856 में हमारे पूर्वजों ने सात समय से संबंधित बढ़ते ज्ञान के प्रकाशन को रोक दिया था। हम शायद उस प्रकाश के प्रकाशन को तो न रोक सकें, पर हम निश्चित रूप से अपने हृदयों के द्वार इस प्रकाश के विरुद्ध बंद कर सकते हैं। हम जैसे मूल सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट निर्माताओं ने किया, ये दिखावा कर सकते हैं कि वो पत्थर वहां था ही नहीं और उसी पर ठोकर खाते रह सकते हैं। हमारी समस्या ये है कि हमारे पास अपना सिर रेत में छिपाए रखने के लिए एक सदी से अधिक का समय नहीं है, क्योंकि न्याय पहले ही शुरू हो चुके हैं। यदि हम अल्फा और ओमेगा को यह सिद्धांत सिखाने दें कि किसी बात का अंत उसकी शुरुआत द्वारा दर्शाया जाता है, तो हम आसानी से देख सकते हैं कि अल्फा और ओमेगा ये दिखा रहा है कि नैशविल की भविष्यवाणी का प्रतिरूप हमारे पितरों में प्रतीक रूप में दिखाया गया था। जब हम इस सत्य को स्वीकार करेंगे, तब हमारा सामना इस वास्तविकता से होगा कि उस भविष्यवाणी के बाद से असफल भविष्यवाणी को सही ठहराने के लिए मानवीय तर्क गढ़ने का हर प्रयास मात्र अंजीर का पत्ता था। तब हम देखेंगे कि जब से हम शत्रु की भूमि में रहे हैं, परमेश्वर हमारे साथ नहीं चला है। वो वहां रहा है, पर केवल इस अर्थ में कि वो हृदयों के द्वार पर प्रवेश चाहता हुआ लगातार दस्तक देता रहा है। यदि मानवीय तर्क का वो अंजीर पत्ता हटाया जाए, तो हम ये भी देख सकते हैं कि नैशविल की भविष्यवाणी को सही ठहराने के लिए हमने जो इनकार या त्रुटिपूर्ण मानवीय तर्क अपनाया है, वो इस बात का प्रमाण है कि हम मसीह के विपरीत चलते रहे हैं। 1856 में फिलाडेल्फिया एडवेंटवाद लाउदिकिया में बदल गया और उन्हें इसका पता था। प्रभु ने इसकी पुष्टि भविष्यवक्त्री और उसके पति के वचनों के माध्यम से की। उन लाउदिकिया हृदयों के द्वार पर खड़े होकर मसीह ने भीतर आकर उनके साथ भोजन करने का प्रस्ताव रखा। उनके द्वारा लाया गया भोजन 7 बार की आधारशिला था। उन्होंने इनकार कर दिया। 380 में अंतिम आंदोलन अब लाउदिकिया से फिलाडेल्फिया की ओर पार जा रहा है, क्योंकि 8वीं कलीसिया 7 कलीसियाओं में से है। प्रभु अल्फा और ओमेगा ने अपने सत्य के वचन के द्वारा इसकी पुष्टि की है। मसीह अब उन हाल ही में मृत सूखी हड्डियों के द्वार पर खड़ा है और उनके भीतर आकर उनके साथ भोजन करने का प्रस्ताव कर रहा है, और जो भोजन वो उनके साथ बांटना चाहता है वही भोजन है जिसे वो 1856 में उनके पितरों के साथ बांटने का प्रयास कर चुका था। ये 7 बार के सिद्धांत की केवल बारीकियां नहीं है जैसा कि 1856 में उनके पितरों के लिए था, नहीं, ये 7 बार की कड़वी दवा है, और ये दवा ऐसी नम्रता की मांग करती है जिसे अक्सर निगलना कठिन होता है।
यहोवा का वचन फिर मेरे पास आया और कहा, हे मनुष्य के संतान, तू सोर के राजकुमार से कह, प्रभु यहोवा यों कहता है, क्योंकि तेरे मन में घमंड आ गया है और तूने कहा, मैं ईश्वर हूँ, मैं समुद्रों के बीच परमेश्वर की गद्दी पर बैठता हूँ, तो भी तू मनुष्य है, परमेश्वर नहीं। यद्यपि तूने अपना मन परमेश्वर के मन के समान ठहराया है, देख, तू दानियल से भी अधिक बुद्धिमान है, कोई भेद तुझसे छिपाया नहीं जा सकता। यहेजकेल 28:1-3।
क्या हो सकता है कि हम में से जिन्होंने नैशविल भविष्यवाणी में भाग लिया वे दानियल से अधिक बुद्धिमान हो?
उसके राज्य के प्रथम वर्ष में मैंने, दानियल ने, पुस्तकों से उन वर्षों की संख्या समझी जिनके विषय में यहोवा का वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के पास आया था कि यरूशलेम के उजाड़ पड़े रहने के 70 वर्ष पूरे होंगे। तब मैंने प्रभु परमेश्वर की ओर अपना मुख किया, प्रार्थना और विनतियों के द्वारा, उपवास, टाट और राख के साथ उसे खोजने को, और मैंने अपने प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना की और अपने पापों को स्वीकार किया और कहा, हे प्रभु, हे महान और भयानक परमेश्वर, जो वाचा को निभाता है और करुणा करता है उनसे जो उससे प्रेम रखते हैं और जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, हमने पाप किया है, अधर्म किया है, दुष्टता की है और विद्रोह किया है, अर्थात तेरी विधियों और तेरे न्यायों से मुड़ गए हैं, और न हमने तेरे दास भविष्यद्वक्ताओं की बात सुनी जो तेरे नाम से हमारे राजाओं, हमारे प्रधानों और हमारे पितरों और देश के सब लोगों से बोलते थे। हे प्रभु, धर्म तो तेरा है, पर हमारे लिए तो मुंह छिपाने की लज्जा है, जैसा आज के दिन है, यहूदा के पुरुषों के लिए, यरूशलेम के निवासियों के लिए और समस्त इसराइल के लिए, जो निकट है और जो दूर हैं, उन सब देशों में जहां तूने उन्हें तितर बितर किया है, इस कारण कि उन्होंने तेरे विरुद्ध अपराध किया है। हे प्रभु, हमारे लिए, हमारे राजाओं, हमारे प्रधानों और हमारे पितरों के लिए मुंह छिपाने की लज्जा है, क्योंकि हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है, परंतु हमारे प्रभु परमेश्वर की ही दया और क्षमाएं हैं, यद्यपि हमने उसके विरुद्ध विद्रोह किया है और हमने अपने प्रभु परमेश्वर की वाणी का पालन नहीं किया कि उसकी व्यवस्थाओं पर चलें जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा हमारे सामने रखी। हाँ, सारे इज़राइल ने तेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया है, अर्थात हटकर कि वे तेरी वाणी ना माने। इसलिए वो शाप हम पर उंडेला गया है, और वो शपथ जो परमेश्वर के दास मूसा की व्यवस्था में लिखी है, क्योंकि हमने उसके विरुद्ध पाप किया है और उसने अपने वचनों को पूरा किया है जो उसने हमारे विरुद्ध और हमारे न्यायियों के विरुद्ध जो हमारा न्याय करते थे कहे थे, हमारे ऊपर बड़ी विपत्ति लाकर। क्योंकि समस्त आकाश के नीचे ऐसा नहीं किया गया जैसा यरूशलेम पर किया गया है।
जैसा कि मूसा की व्यवस्था में लिखा है, ये सब बुराई हम पर आ पड़ी है, तो भी हमने अपने प्रभु अपने परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना नहीं की कि हम अपनी अधर्मताओं से फिरें और तेरी सच्चाई को समझें। इस कारण प्रभु उस विपत्ति पर ध्यान लगाए रहा और उसे हम पर ले आया, क्योंकि हमारा प्रभु परमेश्वर अपने सब कामों में जो वो करता है धर्मी है, परंतु हमने उसकी वाणी नहीं मानी। और अब हे हमारे प्रभु परमेश्वर, जिसने बलवंत हाथ से अपने लोगों को मिस्र देश से बाहर निकाला और जैसा आज के दिन तक है अपने लिए नाम किया है, हमने पाप किया है, हमने दुराचार किया है। हे प्रभु, अपनी सारी धार्मिकता के अनुसार मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तेरे नगर यरूशलेम तेरे पवित्र पर्वत से तेरा क्रोध और तेरा प्रकोप फिर जाए, क्योंकि हमारे पापों और हमारे पितरों की अधर्मताओं के कारण यरूशलेम और तेरे लोग हमारे चारों ओर के सब लोगों के बीच निंदित हो गए हैं। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना और उसकी विनतियां सुन, और प्रभु के निमित्त अपने उजाड़ पड़े पवित्र स्थान पर अपना मुख चमका। हे मेरे परमेश्वर, अपना कान लगाकर सुन, अपनी आँखें खोल और हमारी उजाड़ अवस्था और उस नगर को देख जो तेरे नाम से कहलाता है, क्योंकि हम अपनी धार्मिकता के कारण नहीं परंतु तेरी बड़ी दयाओं के कारण अपनी विनतियां तेरे सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। हे प्रभु सुन, हे प्रभु ग्रासमी द्वारा क्षमा कर, हे प्रभु ध्यान दे और कर, विलंब न कर, हे मेरे परमेश्वर अपने ही निमित्त, क्योंकि तेरा नगर और तेरे लोग तेरे नाम से कहलाते हैं। और जब मैं बोल रहा था और प्रार्थना कर रहा था और अपने पाप और अपनी प्रजा इज़राइल के पाप का अंगीकार कर रहा था और अपने परमेश्वर के पवित्र पर्वत के विषय में अपने प्रभु परमेश्वर के सम्मुख अपनी विनती प्रस्तुत कर रहा था, हाँ, जब मैं प्रार्थना में बोल ही रहा था, तभी वो पुरुष गाब्रियल, जिसे मैंने पहले दर्शन में देखा था, शीघ्रता से उड़ते हुए संध्या की भेंट के समय मुझे छू गया, और उसने मुझे समझाया और मुझसे बातें की और कहा, हे दानियल, अब मैं तुझे बुद्धि और समझ देने के लिए आया हूँ। दानियल 9:2-23।